हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अरमान ने नव्यांशी के रहने के लिए जगह देखनी शुरू ही की थी कि तभी उसके पास वेद का कॉल आ गया। नव्यांशी की जिद के आगे हार मानकर वेद को उसे अरमान के घर रुकने के लिए हाँ कहना ही पड़ा। इसी सिलसिले में बात करने के लिए वेद ने अरमान को कॉल किया था। अरमान इस बात के सख्त खिलाफ था कि नव्यांशी उसके घर पर रहे। उसकी एक वजह रोहन भी था। अगर गलती से भी नव्यांशी के सामने रोहन का सच आ जाता तो वो शिवांशा के बारे में भी सब जान जाती। वेद ने अरमान पर यकीन करते हुए सब कुछ उस पर छोड़ दिया था। वेद से बात करके अरमान कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि नव्यांशी और मनन ने मिलकर पूरा लिविंग रूम बिखेर रखा था। अरमान ने उन्हें देखकर गहरी सांस ली और तेज आवाज में बोला, मनन, लिविंग रूम क्लीन करो और अपने रूम में सोने के लिए जाओ, इट्स टू लेट। और तुम नव्यांशी मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। जिस तरह से अरमान चिढ़ा हुआ था, नव्यांशी समझ गई थी कि उसके पास वेद का कॉल आ गया होगा। अपनी बात कहकर अरमान कमरे में चला गया। वहीं नव्यांशी के फेस पर विक्ट्री स्माइल थी। नव्यांशी ने मनन से धीरे से कहा, अब हम साथ रहने वाले हैं बड़ी, पर तुम्हारे भाई को भी कन्विंस करना होगा। तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूं, मनन जल्दी से बोला। वो नव्यांशी के आने से खुश था, क्योंकि उसके आने के बाद अरमान उस पर इतनी सख्ती नहीं दिखा रहा था। उसकी जरूरत नहीं है, तुम बस लिविंग रूम क्लीन कर दो, अरमान का गुस्सा शांत करने के लिए इतना ही काफी होगा, नव्यांशी ने जवाब दिया। फिर उसने एक नज़र रोहन की तरफ देखा। रोहन शिवांशा की तरह काफी शांत सा बच्चा था। ऊपर से उसके साथ जो भी हुआ था उसके बाद उसका रहा सहा बचपन भी उसे छिन गया था। नव्यांशी रोहन की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई, जिस पर जवाब में रोहन ने भीकी सी मुस्कुराहट दी। उसे देखते हुए नव्यांशी ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, बिल्कुल अपनी बहन की तरह है, ऐसा लगता है इन दोनों भाई बहन की स्माइल पर टैक्स लगता है, तभी जब देखो मुंह बनाकर रहते हैं। हालांकि अरमान ने मनन को लिविंग रूम साफ करने के लिए कहा था, लेकिन नव्यांशी ने देखा कि जैसे ही वो कमरे के अंदर आने को हुई, रोहन मनन की पूरी हेल्प कर रहा था। उसे एक नज़र देखने के बाद नव्यांशी अंदर आते हुए अरमान से बोली, रोहन, अपनी लाइफ को लेकर कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड नहीं लगता तुम्हें? बहुत मुश्किल से मुस्कुराता है और ठीक से बात भी नहीं करता है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? उसके साइकियाट्रिस्ट के साथ सेशंस चल रहे हैं और उसकी टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। फिलहाल उस बारे में बात करते हैं जिसके लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, अरमान ने सख्त आवाज में कहा। देखो, इस तरह रिएक्ट मत करो, फिर मुझे लगेगा कि मैं तुम पर बोझ बन रही हूं। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहां रहूं तो ठीक है, मैं यहां से चली जाती हूं, नव्यांशी ने झुंझलाकर जवाब दिया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि अरमान उसे लेकर बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं था। पहले ये सब वो जिद में कर रही थी, लेकिन अरमान जिस तरह से रिएक्ट कर रहा था उसके बाद नव्यांशी को वहां रुकना सही नहीं लगा। नव्यांशी गुस्से में वहां से जाने को हुई, तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अरमान ने सब कुछ अचानक से किया था और अनजाने में नव्यांशी का हाथ उसके सीने पर लग गया था। अरमान ने तुरंत नव्यांशी को छोड़ा और सॉरी बोलते हुए कहा, मुझे तुम्हारे यहां रुकने से प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम खुद देखो, हमारा घर बहुत छोटा है, तुम कैसे एडजस्ट करोगी? इन दोनों को संभालने की वजह से तुम्हारा काम बढ़ जाएगा और मैं तुम्हें वो लाइफस्टाइल नहीं दे पाऊंगा जो तुम अपने घर में बिता रही थी। एक सेकंड, मैंने तुमसे कुछ डिमांड भी नहीं की है, बस तुम लोगों के साथ रहते हुए मुझे अपने घर की याद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने जिद की। रही बात तुम्हारे काम की, तो मैंने बोला तो है कि तुम्हारी हेल्प करूंगी, नव्यांशी ने उसे समझाते हुए कहा। अरमान ने एक नज़र नव्यांशी की तरफ देखा। आज वो पूरे दिन घर में थी, लेकिन फिर भी उसने कैजुअल्स पहनने के बजाय ब्रांडेड फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उसे देखते ही अरमान को किसी प्रिंसेस की वाइब आती थी। अरमान ने गहरी सांस ली और तंज भरे लहजे में कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई काम करना भी आता होगा। तुम्हारे घर में हर काम के लिए हाउस हेल्पर है, तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम किसी प्रिंसेस की तरह रहती हो। छोटे मोटे काम तुमसे नहीं हो पाएंगे और ना ही मैं करवा पाऊंगा। अब तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम भूल रहे हो कि मैं वेद सिंह चौहान की बहन हूं, जिसने अपने भाई बहनों को करियर के साथ साथ घर के हर एक काम में ट्रेन किया है। जस्ट वेट एंड सी, नव्यांशी मुस्कुराते हुए बोली। अरमान ने नव्यांशी को कमरे में इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे जाने के लिए कह सके। जिस तरह उसके एक्सप्रेशंस देखकर नव्यांशी पहले ही सब समझ गई थी, तो उसे सीधे सीधे कुछ कहकर अरमान उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। मजबूरी में ही सही, लेकिन अरमान ने अब नव्यांशी के साथ वहां रुकने को लेकर कोई बहस नहीं की। उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, इस घर में तीन ही रूम है, एक रूम में रोहन और मनन रहते हैं, दूसरा कमरा शिवांशा का था जिसमें आजकल मैं रह रहा हूँ, तुम उस रूम में रह सकती हो, एक रूम को मैंने ऑफिस के हिसाब से सेट किया है, मैं उसमें एडजस्ट कर लूंगा। वाओ, तुम कितने अच्छे हो, ठीक है ऐसा ही करते हैं, नव्यांशी खुश होकर बोली और बाहर चली गई। अरमान हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसने सिर हिलाकर कहा, एक बार झूठे मन से भी नहीं कहा कि मैं हॉर में रह लूंगी या कहीं और एडजस्ट कर लूंगी, फिर कहती है कि मैं वेद सिंह चौहान की बहन हूं, मुझे सब आता है। अरमान शिवांशा के कमरे में गया और अपना सामान एडजस्ट करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ चौहान पैलेस में इस वक्त शिवांशा अपनी आंखें कसकर बंद करके खड़ी थी। अनजाने में उसने वेद के सामने मिस बंसल का नाम ले लिया था, ये नाम उसने आज ही सुना था।
कुछ पल के लिए उन दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। शिवांशा ने वेद की तरफ देखा और धीरे से पूछा, मिस बंसल कौन है? सुबह वो लोग बात कर रहे थे कि मुझे छोड़ने के बाद आप उनसे शादी कर लोगे। क्या आप पहले भी मुझे मारने के बाद उनसे शादी करने वाले थे? चलो अच्छा है तुम्हारे सामने मिहिका का नाम आ गया, कभी ना कभी मुझे तुम्हें उसके बारे में बताना ही था, वेद ने जवाब दिया। उसने खुद से ही मिहिका के बारे में बताने का सोचा। वेद बेड पर आकर बैठ गया और उसने शिवांशा को अपने पास बैठने का इशारा किया। उसके पास बैठने से पहले शिवांशा एक पल के लिए झिझक गई। वेद ने पहले ही उसे अपने बेड और बाकी चीजों से दूर रहने के लिए कहा था। वेद उसकी आंखों में उलझन के भावों को समझ गया था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का सोच रहा हूं, तो तुम्हें भी भूलना होगा। ठीक है, मैंने तुम्हें मेरे सामान को टच करने से मना किया था, पर, बोलते हुए वेद रुक गया। उसके लिए बार बार ये डायरेक्टली कहना अजीब था कि वो अब शिवांशा के साथ साथ खुद को भी मौका देने के लिए तैयार है। शिवांशा आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप वेद के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों की नजरें सामने की तरफ थीं। वेद ने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारे दिल में जो भी सवाल उठ रहे हैं तुम पूछ सकती हो। मिस बंसल कौन है? क्या आप उनसे प्यार करते हो? शिवांशा ने अटकती आवाज में पूछा।
वो मेरी फ्रेंड है। जब मम्मी पापा की डेथ हुई थी तब मैं अब्रॉड से यहाँ आया हुआ था। मैंने हमेशा से वहीं सेटल होने का सोचा था। उस वक्त मैं पापा के ही एक फ्रेंड की कंपनी में जॉब करता था। मैं इंडिया आया था तब मम्मी यही चाहती थीं कि मैं उनकी पसंद की हुई लड़की से मिलूं, ताकि हम दोनों एक दूसरे को जान सकें। हालांकि सब कुछ पहले से ही तय था, मम्मी पापा ने अपनी तरफ से मेरी सगाई भी फिक्स कर दी थी, वेद ने बताया। बोलते वक्त उसकी आवाज़ काफ़ी मायूस थी। वेद उस हादसे को भुलाने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन जब भी वो उसके बारे में बात करता था तब उसके दिल में यही ख्याल आता था कि अगर उस दिन देवराज ने उनके साथ विश्वासघात नहीं किया होता तो आज उनकी लाइफ ही अलग होती। वही शिवांशा को भी अंदर ही अंदर डर लगने लगा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप उनकी कोई बात नहीं टालते थे, तो क्या आप सच में उनसे शादी करोगे? बोलते हुए शिवांशा का चेहरा वेद की तरफ था। वेद ने शिवांशा की तरफ देखा और जवाब में कहा, ये सच है कि मैंने उनकी किसी बात को आज तक कभी मना नहीं किया था, लेकिन उस वक्त भी मम्मी ने यही कहा था कि अगर मुझे मिहिका पसंद ना आए तो मैं मना कर सकता हूँ। नो डाउट मिहिका एक बहुत अच्छी लड़की है और हर तरीके से परफेक्ट है, पर दूसरा सच ये भी है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। कुछ देर के लिए उनके बीच बिल्कुल खामोशी छा गई। शिवांशा ने आगे पूछा, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? अगर आपको मिहिका नहीं पसंद थी तो किसी और से भी कर सकते थे। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे भाई बहनों को मम्मी पापा के जाने की कमी महसूस हो। देवराज से मिले धोखे के बाद मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं था। यही लगता था कि जो भी हमारी लाइफ में आएगा वो हमारी फैमिली को तोड़ने की कोशिश करेगा। मुझे कभी शादी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई और ना ही किसी से प्यार हुआ था। मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ थी, मुझे बस उन्हें उनकी लाइफ में कामयाब करना था। ये मेरे मम्मी पापा का सपना था। मैंने मिहिका को भी यही कहा था, लेकिन उसने इंतज़ार करना चुना। ना जाने क्यों उसे लगता था कि कभी ना कभी जब मेरे भाई बहन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे तब मैं अकेला रह जाऊंगा और मुझे किसी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहेगी। वेद ने शिवांशा को सब कुछ बता दिया था, अपने शादी ना करने के कारण से लेकर मिहिका के इंतज़ार तक की कहानी। मिहिका के बारे में सुनकर शिवांशा को काफ़ी बुरा लग रहा था। वो पिछले 13 सालों से वेद का इंतज़ार कर रही थी और ये इंतज़ार आज भी अधूरा था। शिवांशा को एक पल के लिए लगा कि वो वेद और मिहिका के बीच में आ रही है, और पिछले 2-3 दिनों से तो उसने खुलकर ये तक कह दिया था कि उसे हमेशा वेद की वाइफ बनकर रहना है। उसके दिल में यही ख्याल आया कि शायद इसीलिए वेद उसे बार बार मना कर रहा था और अपनी उम्र के हिसाब से लाइफ पार्टनर चुनने को कह रहा था। शिवांशा ने आँखें बंद की और मन ही मन कहा, सच में मैं बेवकूफ़ हूँ, ये मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं बता पा रहे थे और मैं भी जिद पकड़ कर बैठी थी। मिहिका उनके लिए हर हिसाब से परफेक्ट है और मैं उनके रिश्ते के बीच में आ रही हूँ। वेद से अलग होने का ख्याल सोचकर ही शिवांशा का दिल भारी होने लगा। एक पल के लिए उसे महसूस हुआ कि कोई अंदर से उसका गला दबा रहा है। शिवांशा की आंखें नम हो गई थीं, लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूत किया। शिवांशा वेद के पास से खड़ी हुई और फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, आई एम रियली सॉरी, मुझे पूरी बातें पता नहीं थीं। आप सच बोल रहे हो, मैं बहुत इमैच्योर हूँ, अनजाने में आप दोनों के बीच में आ गई। वैसे ही इस शादी की वजह से मिस बंसल के दिमाग में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई होंगी, बट डोंट वरी, अब मैं जिद नहीं करूँगी। शिवांशा वहां से जाने को हुई तभी वेद ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने गहरी सांस ली और शिवांशा का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। शिवांशा के दिल की धड़कनें तो मानो कुछ पल के लिए थम सी गईं। वो वेद के बेहद करीब थी, इतनी करीब कि उसके दोनों हाथ वेद के कंधों पर थे।
हाँ, इमेच्योर तो तुम हो, तभी पूरी बात सुने बिना ही अपना सो कॉल्ड डिसीजन सुनाकर जाने लगी। शायद तुमने मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने ये कहा कि मुझे अब तक किसी से प्यार नहीं हुआ था, ना कि ये बोला कि मुझे किसी से अब तक प्यार नहीं हुआ है, वेद ने गहरी लेकिन धीमी आवाज में कहा। शिवांशा की नजरें जो अब तक झुकी हुई थी, वेद की बात सुनकर उसने जल्दी से उसकी आंखों में देखा। न जाने वो इस लम्हे का कब से इंतजार कर रही थी जब वेद अपने दिल की बात उसके सामने रखने वाला था। आज वो पल आ ही गया था जिसका शिवांशा को बेसब्री से इंतजार था। देवराज से अपनी नफरत और बदले को भुलाकर वेद ने शिवांशा के साथ आगे बढ़ने का मन बना लिया था। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगा कि पूरा लव कन्फेशन एक ही चैप्टर में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। जितना ज्यादा कमेंट आएंगे इनका प्रपोज उतना ही ज्यादा अच्छा और रोमांटिक लिखने वाली हूँ। अगले पार्ट पर मिलते हैं, तब तक आप लोग भी शिवांशा की तरह वेद के दिल की बात सुनने का इंतजार कीजिए।